संख्याएं। याकूब के वंशज 400 वर्ष तक मिस्र में रहे। वे एक नए फिरौन राजवंश के गुलाम बन गए। परमेश्वर के निर्देश पर मूसा उन्हें मिस्र से लाल सागर के माध्यम से सनाई तक ले गया। वे मिस्र की सेना से सुरक्षित थे जो उनका पीछा कर रही थी। अपने सभी जानवरों के साथ सूखी भूमि पर लाल सागर को पार किया। फिरौन और उसकी सेना को समुद्र में नष्ट होते देखा। भगवान की उपस्थिति और आवाज को सुनकर माउंट सनाई पर आ गए। मूसा से परमेश्वर की आज्ञाएं, नियम और विनियम प्राप्त हुए। लगभग एक वर्ष तक उन्होंने माउंट सनाई के पास डेरा डाला। परमेश्वर ने उन्हें इब्राहिम, इसहाक और याकूब से वादा किए गए देश में जाने के लिए संगठित करना और तैयार करना शुरू कर दिया। इस प्रकार इसराइलियों के मिस्र से निकलने के बाद दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन को यहोवा ने सीनै के जंगल में मिलाप वाले तंबू में मूसा से बातें की। उसने कहा, पूरे इसराइली समुदाय की उनके कुलों और परिवारों के अनुसार जनगणना करो और एक एक करके प्रत्येक व्यक्ति की नाम सहित सूची बनाओ। तू और हारून इसराइल में 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के जितने पुरुष सेना में काम करने के योग्य हों, उन्हें उनके दल के अनुसार गिने। प्रत्येक गोत्र से एक व्यक्ति, प्रत्येक अपने परिवार का मुखिया, तुम्हारी सहायता करेगा। मूसा, हारून और इसराइल के 12 नेताओं ने प्रत्येक ने अपने परिवार का प्रतिनिधित्व करते हुए 20 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी इसराइली पुरुषों को, जो इसराइल की सेना में सेवा करने में सक्षम थे, उनके परिवारों के अनुसार गिना गया। लेवी के गोत्र को छोड़कर कुल संख्या 603,550 थी। लेवियों को साक्षी पत्र के तंबू और उसके सारे साज सामान और उससे जुड़ी हर चीज का प्रभारी होना था। कंपाइलर की टिप्पणी, मान ले कि गिने गए पुरुषों की शादी हुई थी और प्रति परिवार औसतन 3.5 बच्चे थे, तो माउंट सनाई में 300,000 से अधिक इजरायली डेरा डाले हुए थे। टिप्पणियां समाप्त करें। यहोवा ने मूसा से कहा, लेवी के गोत्र को ले आओ और उन्हें हारून याजक के पास ले आओ कि वह उसकी सहायता करे। उन्हें मिलाप वाले तंबू में पवित्र तंबू का काम करके उसके और सारे समुदाय के लिए कर्तव्य निभाना होगा। संकलक की टिप्पणी, भगवान ने पुजारियों द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्यों और कार्यों को निर्दिष्ट किया। अब जो मसीह में हैं, वे याजक हैं जिन्हें कार्य करने हैं। टिप्पणियां समाप्त करें। यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों को आज्ञा दे कि जिस किसी को संक्रामक चर्म रोग या किसी प्रकार का स्राव हो या जो किसी शव के कारण अशुद्ध हो, उसे छावनी से बाहर कर दें। नर और नारी को समान रूप से विदा करो, उन्हें छावनी से बाहर भेज दे कि वे उनकी छावनी को, जहां मैं उनके बीच रहता हूं, अशुद्ध न करें। संकलक की टिप्पणी, भगवान भौतिक जीवन में संचारी और संक्रामक रोगों के लिए संगरोध के महत्व और मसीह के शरीर में पापों को दूर करने के महत्व को जानते हैं। टिप्पणियां समाप्त करें। जब कोई पुरुष या महिला किसी भी तरह से दूसरे के साथ अन्याय करता है या भगवान के प्रति विश्वासघात करता है, तो वह व्यक्ति दोषी होता है और उसे अपने द्वारा किए गए पाप को स्वीकार करना होगा। उसे अपने अपराध का पूरा बदला चुकाना होगा, उसमें 5वां हिस्सा जोड़ना होगा और यह सब उस व्यक्ति को देना होगा जिसके साथ उसने अन्याय किया है। संकलक की टिप्पणी, यदि आपका भाई आपके विरुद्ध पाप करता है, तो जाकर उसे अपने और अकेले के बीच में उसकी गलती बताएं। यदि वह तेरी सुनता है, तो तूने अपने भाई को प्राप्त कर लिया है। मत्ती 18:15 से। टिप्पणियां समाप्त करें। प्रभु ने मूसा से कहा, यदि कोई पुरुष या स्त्री एक विशेष प्रतिज्ञा करना चाहता है, नाजीर के रूप में प्रभु से अलग होने की प्रतिज्ञा, तो उसे शराब और अन्य किण्वित पेय से दूर रहना चाहिए और शराब या अन्य से बना सिरका नहीं पीना चाहिए किण्वित पेय। उसे अंगूर का रस नहीं पीना चाहिए या अंगूर या किशमिश नहीं खाना चाहिए। जब तक वह नाजीर है उसे अंगूर की बेल से निकलने वाली कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए, यहां तक कि बीज या छिलके भी नहीं। संकलक की टिप्पणी, नाजीराइट प्रतिज्ञा के लिए व्यक्ति को किसी विशेष सेवा के प्रयोजन के लिए स्वर्गाए गए अनुशासन द्वारा स्वयं को समर्पित करने की आवश्यकता होती है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बाइबल इंसाइक्लोपीडिया एंड कमेंट्स से, जब मूसा ने तंबू की स्थापना पूरी की तब उसने उसका अभिषेक किया और उसे और उसके सारे सामान को पवित्र किया। उसने वेदी और उसके सभी बर्तनों का भी अभिषेक और अभिषेक किया। तब इसराइल के प्रधानों ने, अर्थात कुलों के मुख्य पुरुषों ने, जो गिने हुए लोगों के ऊपर प्रधान गोत्रों के प्रधान थे, भेंट चढ़ाई। गिनती 7:1-3:12 दिनों तक प्रत्येक दिन एक नेता वेदी के समर्पण के लिए अपनी भेंट लाता रहा। तो तंबू समर्पित किया गया था। उनके मिस्र से निकलने के दूसरे वर्ष के पहले महीने में यहोवा ने सीने के जंगल में मूसा से बातें की। उसने कहा, इसराइलियों को नियत समय पर फसह मनाना। उन्होंने पहले महीने के 14वें दिन गोधूली के समय सीने के रेगिस्तान में ऐसा किया। इसराइलियों ने सब कुछ वैसा ही किया जैसा यहोवा ने मूसा को आदेश दिया था। उसी दिन कुछ लोग मूसा और हारून के पास आकर मूसा से कहने लगे, हम तो लोए के कारण अशुद्ध हो गए हैं, परंतु हमको अन्य इसराइलियों के संग नियत समय पर यहोवा की भेंट चढ़ाने से क्यों रोका जाए? मूसा ने उन्हें उत्तर दिया, जब तक मैं न जान लूं तब तक प्रतीक्षा करो कि यहोवा तुम्हारे विषय में क्या आज्ञा देता है। संकलक की टिप्पणी, यदि हम यह जानने तक प्रतीक्षा करें कि ईश्वर क्या कहता है तो कई समस्याओं से बचा जा सकेगा। टिप्पणियां समाप्त करें। गवाही के तंबू को ढकने वाला बादल। जिस दिन पवित्र तंबू अर्थात साक्षी पत्र का तंबू खड़ा किया गया उसी दिन बादल ने उसे ढक लिया। संध्या से भोर तक निवास के ऊपर का बादल आग के समान दिखाई देता था। ऐसा ही चलता रहा, बादल ने उसे ढक लिया और रात को वह आग के समान दिखाई देने लगा। जब जब बादल तंबू के ऊपर से उठता तब तब इसराइली प्रस्थान करते थे, जहां कहीं बादल ठहरा वहीं इसराइलियों ने डेरे खड़े किए। दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 20वें दिन को साक्षी पत्र के तंबू के ऊपर से बादल उठ गया। तब इसराइली सीने के जंगल से निकल पड़े और एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहे जब तक कि बादल पारान के जंगल में स्थिर न हो गया। लोगों ने यहोवा के सामने अपने कष्टों की शिकायत की और जब उसने उन्हें सुना तो उसका क्रोध भड़क उठा। तब यहोवा की ओर से आग उनके बीच में जल उठी और छावनी का कुछ बाहरी भाग भस्म हो गया। जब लोगों ने मूसा को पुकारा तब उसने यहोवा से प्रार्थना की और आग बुझ गई। मूसा की शिकायत। उनके साथ भीड़ दूसरे भोजन की लालसा करने लगी और इसराइली फिर विलाप करने लगे। मूसा ने अपने अपने तंबू के द्वार पर प्रत्येक परिवार के लोगों को विलाप करते हुए सुना। यहोवा अत्यंत क्रोधित हुआ और मूसा परेशान हो गया। तूने अपने दास पर यह विपत्ति क्यों डाली है? मैंने तुम्हें अप्रसन्न करने के लिए ऐसा क्या किया है कि तुमने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाल दिया? क्या मैंने इन सभी लोगों की कल्पना की थी? क्या मैंने उन्हें जन्म दिया? तू मुझसे क्यों कहता है कि जैसे एक धाय शिशु को गोद में उठाकर उस देश में ले जाती है जिसके विषय में तूने उनके पुरखाओं से शपथ खाकर कहा था, मैं इन सभी लोगों के लिए मांस कहां से ला सकता हूं? वे मुझसे चिल्लाते रहते हैं, हमें खाने के लिए मांस दो, मैं इन सभी लोगों को अकेले नहीं ले जा सकता, बोझ मेरे लिए बहुत भारी है। यदि तुम मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करोगे तो मुझे अभी मार डालो। यदि मुझ पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है और मुझे अपने ही विनाश का सामना न करने दो। संकलक की टिप्पणी, यहां तक कि बहुत अच्छे लोग भी लगातार झगड़ने और शिकायत करने से तनावग्रस्त हो जाते हैं। शैतान द्वारा उनके विश्वास की परीक्षा ली जा रही है। टिप्पणियां समाप्त करें। ईश्वर नेतृत्व का आयोजन करता है। यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइल के 70 पुरनियों को मेरे पास ले आओ जो तुम लोगों के बीच नेता और अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें मिलाप वाले तंबू के पास आओ कि वे वहां तुम्हारे साथ खड़े रहें। मैं वहां आऊंगा और तुमसे बातें करूंगा और जो आत्मा तुम में है उसमें से कुछ ले लूंगा और उस आत्मा को उन पर डाल दूंगा। वे आपको लोगों का बोझ उठाने में मदद करेंगे ताकि आपको इसे अकेले नहीं उठाना पड़ेगा। अब यहोवा तुम्हें मांस देगा और तुम उसे खाओगे। तुम इसे केवल एक दिन या दो दिन या 5, 10 या 20 दिन तक नहीं खाओगे बल्कि पूरे महीने तक खाओगे जब तक कि यह तुम्हारी नाक से बाहर न निकल जाए और तुम्हें इससे घृणा न हो जाए क्योंकि तुमने प्रभु को अस्वीकार कर दिया है। परिवार ईर्ष्यालु। मरियम और हारून ने कूशी से विवाह करने के कारण मूसा के विरुद्ध बातें करना आरंभ कर दिया। क्या यहोवा ने केवल मूसा के द्वारा ही बातें की हैं? उन्होंने पूछा। क्या उसने भी हमारे माध्यम से बात नहीं की? यहोवा का क्रोध उन पर भड़क उठा और उसने उनको छोड़ दिया। जब बादल तंबू के ऊपर से उठा तो मरियम जो कोढ़ी थी वहां खड़ी थी। उसे 7 दिन तक छावनी से बाहर रखना, उसके बाद उसे वापस लाया जा सकता है। अत मरियम को 7 दिन तक छावनी के बाहर कैद रखा गया और लोग तब तक आगे नहीं बढ़े जब तक उसे वापस नहीं लाया गया। वादा किए गए देश की खोज। यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश का पता लगाने के लिए कुछ लोगों को भेजो जिसे मैं इसराइलियों को दे रहा हूँ। प्रत्येक पूर्वज गोत्र में से अपने नेताओं में से एक को भेजो। नेगेव से होते हुए पहाड़ी देश में ऊपर जाओ। देखो कि भूमि कैसी है और वहां रहने वाले लोग शक्तिशाली हैं या कमजोर, थोड़े हैं या बहुत। वे किस प्रकार की भूमि पर रहते हैं? यह अच्छा है या बुरा? वे किस प्रकार के शहरों में रहते हैं? क्या वे बिना दीवार वाले या किलेबंद हैं? मिट्टी कैसी है? क्या यह उपजाऊ है या खराब? इस पर पेड़ हैं या नहीं? भूमि के कुछ फल वापस लाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। 40 दिनों के अंत में वे भूमि की खोज से लौट आए। वे पारान मरुभूमि के कादेश में मूसा और हारून और समस्त इसराइली मंडली के पास लौट आए। वहां उन्होंने उनको और सारी सभा को समाचार दिया और उस देश का फल उन्हें दिखाया। वहां रहने वाले लोग शक्तिशाली हैं और नगर दृढ़ और बहुत बड़े हैं। कालेब ने मूसा के सामने लोगों को चुप करा दिया और कहा, हमें ऊपर जाकर देश पर अधिकार कर लेना चाहिए क्योंकि हम निश्चय ऐसा कर सकते हैं। परंतु जो पुरुष उसके साथ गए थे उन्होंने कहा, हम उन लोगों पर आक्रमण नहीं कर सकते, वे हमसे अधिक मजबूत हैं। और उन्होंने इसराइलियों में उस देश के विषय में बुरी चर्चा फैला दी जिसे उन्होंने खोजा था। उन्होंने कहा, जिस भूमि की हमने खोज की वह उसमें रहने वालों को निगल जाती है। हमने वहां जितने लोगों को देखा वे सभी बड़े आकार के थे। हमने वहां नेफिलिमों को देखा, अनाक के वंशज नेफिलिम से आए थे। हम अपनी दृष्टि में टिड्डे जैसे लग रहे थे और हम उन्हें एक जैसे ही दिखते थे। अधिक झगड़ा और शिकायत करना। सब इसराइली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगी, काश हम मिस्र में मर जाते। यहोशू और कालेब ने अपने कपड़े फाड़ दिए और पूरी इसराइली सभा से कहा, जिस देश से होकर हम गुजरे और उसका पता लगाया वह बहुत अच्छा है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न है तो वह हमें उस देश में ले जाएगा जहां दूध और शहद की धाराएं बहती हैं और उसे हमको दे देंगे। परंतु यहोवा से बलवा न करो और देश के लोगों से मत डरो क्योंकि हम उनको निगल जाएंगे। परंतु यहोवा हमारे संग न रहेगा, उनसे डर लगता है। परंतु सारी सभा में उन पर पथराव करने की चर्चा हुई। यहोवा ने मूसा से कहा, ये लोग कब तक मेरा अपमान करते रहेंगे? मेरे द्वारा उनके बीच दिखाए गए सभी चमत्कारों के बावजूद वे कब तक मुझ पर विश्वास करने से इनकार करते रहेंगे? मैं उन्हें मरी से मार डालूंगा और उन्हें नष्ट कर दूंगा, परंतु मैं तुम्हें उनसे एक महान और शक्तिशाली राष्ट्र बना दूंगा। मूसा ने परमेश्वर से विनती की कि वह उन्हें नष्ट न करे। अपने महान प्रेम के अनुसार इन लोगों का पाप क्षमा करो, जैसे तुमने उन्हें उस समय से क्षमा किया है जब से वे मिस्र छोड़कर अब तक आए हैं। प्रभु ने उत्तर दिया, जैसा तुमने पूछा था मैंने उन्हें क्षमा कर दिया है। तो भी मेरे जीवन की शपथ और यहोवा का तेज सारी पृथ्वी पर भर गया है, उन मनुष्यों में से एक भी नहीं जिनने मेरी महिमा देखी और जो आश्चर्य कर्म मैंने मिस्र और जंगल में दिखाए, परंतु जिनने मेरी आज्ञा न मानी और मुझे परखा, उनमें से एक भी नहीं। कई बार उनमें से कोई भी उस भूमि को कभी नहीं देख पाएगा जिसका मैंने वादा किया था। यह दुष्ट मंडली कब तक मुझ पर कुड़कुड़ाती रहेगी? 20 वर्ष या उससे अधिक उम्र के और उससे अधिक उम्र के लोगों की गिनती में जितने लोग मेरे विरुद्ध बुड़बुड़ाते थे, उन सभों में से यपुन्ने के पुत्र कालेब और पुत्र यहोशू को छोड़ और कोई उस देश में आने न पाएगा जहां मैंने शपथ खाई है कि मैं तुम्हें बसाऊंगा। नून का जो लोग देश की बदनामी करते थे, वे प्रभु के सामने प्लेग से मर गए। बलि चढ़ाना। यदि कोई परदेशी तेरे संग परदेशी होकर रहे, वह कोई तेरे बीच में सदा रहे और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला अन्नबलि चढ़ाना चाहे, तो जैसा तू करेगा वैसा ही वह भी करेगा। मंडली के लिए, तुम्हारे लिए और तुम्हारे संग रहने वाले परदेशियों के लिए एक ही विधि हो, वह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि रहे। तुम और परदेशी यहोवा के सामने एक समान ठहरोगे। तुम्हारे और तुम्हारे साथ रहने वाले परदेशियों के लिए एक ही व्यवस्था और एक ही नियम हो। परंतु यदि तुम मंडली को बताए बिना अनजाने में पाप करो, तो सारी मंडली अपने झुंड में से एक बछड़ा होमबलि करके चढ़ाए और वे क्षमा किए जाएंगे, क्योंकि यह भूल हुई है। परंतु जो कोई अनादरपूर्वक पाप करता है, चाहे वह देशी हो या परदेशी, वह प्रभु की निंदा करता है और वह व्यक्ति अपने लोगों में से अलग कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसने यहोवा के वचन का तिरस्कार किया और उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है, वह मनुष्य निश्चय नाश किया जाएगा, उसका दोष उस पर बना रहता है। संकलक की टिप्पणी, ईश्वर के प्रेम और आदेशों की परवाह किए बिना पाप को पुरानी वाचा के तहत बर्दाश्त नहीं किया गया था और न ही नई वाचा में इसे बर्दाश्त किया जा सकता है। पौलुस ने कहा कि शैतान के हवाले हो जाओ और जानबूझकर पाप करने वाले किसी अपश्चातापी भाई के साथ मत जुड़ो। 1 कुरिन्थियों 5 से उसके लोगों से अलग हो जाना और शैतान को सौंप देना परमेश्वर के लोगों की मंडली से पाप को दूर कर देता है। टिप्पणियां समाप्त करें। मूसा के विरुद्ध विद्रोह। कोरह, दातान और अबीराम 250 समुदाय के नेताओं के साथ मूसा का विरोध करने के लिए एक समूह के रूप में आए। उन्हें अपना नेता चुनने के लिए प्रभु के सामने आना था। दातान और अबीराम ने अपने तंबू में रहने से इनकार कर दिया। तब परमेश्वर ने जमीन खोल दी, क्योंकि उनकी कब्र ने उन्हें और परिवार सहित उनकी सारी संपत्ति को भस्म कर दिया। तब यहोवा की ओर से आग ने 250 अनुयायियों को भस्म कर दिया। अगले दिन इसराइल की सारी मंडली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी। उन्होंने कहा, तुमने यहोवा के लोगों को मार डाला है। परंतु जब मंडली मूसा और हारून के सामने इकट्ठे होकर मिलाप वाले तंबू की ओर मुड़ी, तो अचानक बादल ने उसे ढांप लिया और यहोवा का तेज प्रकट हुआ। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के सामने गए और यहोवा ने मूसा से कहा, इस मंडली से दूर हो जाओ कि मैं उनको तुरंत अंत कर दूं। और वे औंधे मुंह गिर पड़े। तब मूसा ने हारून से कहा, अपना धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग समेत धूप डाल और मंडली के पास जाकर उनके लिए प्रायश्चित कर। यहोवा की ओर से क्रोध निकला है, प्लेग शुरू हो गया है। इसलिए हारून ने मूसा के कहने के अनुसार किया और मंडली के बीच में दौड़ गया। लोगों में मरी फैल चुकी थी, परंतु हारून ने धूप चढ़ाया और उनके लिए प्रायश्चित किया। वह जीवितों और मृतकों के बीच खड़ा हो गया और प्लेग रुक गया। परंतु कोरह के कारण मरने वालों के अतिरिक्त 14,700 लोग महामारी से मर गए। तब हारून मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मूसा के पास लौट आया, क्योंकि महामारी रुक गई थी। एरोन स्टाफ खिलता है और भगवान जिम्मेदारियां सौंपता है। यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से कह और उनसे 12 लाठियां ले आ, अर्थात उनके पितरों के हर गोत्र के प्रधान में से एक। प्रत्येक व्यक्ति का नाम उसकी लाठी पर लिखो। लेवी की लाठी पर हारून का नाम लिखना, क्योंकि प्रत्येक पितर गोत्र के प्रधान के लिए एक लाठी होनी चाहिए। उन्हें मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के सामने रख, जहां मैं तुझसे मिलाऊं। जिस मनुष्य को मैं चुनूंगा उसकी लाठी उग आएगी, और मैं इसराइलियों द्वारा तुम्हारे विरुद्ध लगातार बुड़बुड़ाने से छुटकारा पा लूंगा। अगले दिन मूसा ने साक्षी पत्र के तंबू में प्रवेश किया और देखा कि हारून की लाठी, जो लेवी के घराने का प्रतिनिधित्व करती थी, न केवल अंकुरित हुई थी, बल्कि उसमें कलियां भी लगी थीं, फूल भी लगे थे और बादाम भी उग आए थे। तब मूसा ने सारी लाठियों को यहोवा के सामने से निकालकर सब इसराइलियों के पास ले आया। उन्होंने उन पर दृष्टि की और हर एक ने अपनी अपनी लाठी उठा ली। यहोवा ने मूसा से कहा, हारून की लाठी को साक्षी पत्र के सामने फिर रख दे कि वह विद्रोहियों के लिए चिन्ह ठहरे। इससे उनका मुझ पर बुड़बुड़ाना बंद हो जाएगा और वे मरेंगे नहीं। परमेश्वर मिलाप वाले तंबू के संबंध में लेवियों को उत्तरदायित्व सौंपता है। यहोवा ने हारून से कहा, तुम्हारे पुत्रों और तुम्हारे पिता के परिवार को पवित्र स्थान के विरुद्ध अपराधों का उत्तरदायित्व उठाना होगा, और केवल तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को याजक पद के विरुद्ध अपराधों का उत्तरदायित्व उठाना होगा। अपने पितरों के गोत्र में से अपने संगी लेवियों को अपने साथ ले आओ, और जब तुम और तुम्हारे पुत्र साक्षी पत्र के तंबू के सामने सेवा टहल करें, तब तुम्हारी सहायता करो। उन्हें तुम्हारे प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और तंबू के सभी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन उन्हें पवित्र स्थान या वेदी के सामान के पास नहीं जाना चाहिए, अन्यथा वे और तुम दोनों मर जाएंगे। वे तुम्हारे साथ मिलें और मिलाप वाले तंबू की देखभाल, तंबू के सारे काम के लिए उत्तरदायी हों, और जहां तुम हो वहां कोई और उसके निकट न आ सके। हारून और मूसा ने पाप किया। पूरा इसराइली समुदाय जिन मरुभूमि में पहुंचा और वे कादेश में रुके। वहां मिरियम की मृत्यु हो गई और उसे दफनाया गया। अब मंडली के लिए जल न रहा और लोग मूसा और हारून के सामने इकट्ठे हो गए। उन्होंने मूसा से झगड़ा किया। यहोवा ने मूसा से कहा, लाठी ले लो और तुम और तुम्हारा भाई हारून मंडली को इकट्ठा करो। उनकी आंखों के सामने उस चट्टान से बात करो और वह अपना पानी बरसा देगी। मूसा ने उनसे कहा, हे विद्रोहियों सुनो, क्या हम तुम्हारे लिए इस चट्टान में से जल निकालें? तब मूसा ने अपना हाथ उठाया और अपनी लाठी से चट्टान पर 2 बार प्रहार किया। पानी बह निकला और समुदाय और उनके मवेशियों ने पानी पी लिया। परंतु यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, तुमने मुझ पर इतना भरोसा न किया कि मुझे इसराइलियों के सामने पवित्र न ठहराया, इस कारण तुम इस मंडली को उस देश में न ले जाओगे जिसे मैं उन्हें देता हूँ। वादा किए गए देश के करीब पहुँचना। मूसा ने कादेश से एदोम के राजा के पास दूत भेजे और कहा, तेरा भाई इसराइलियों कहता है कि तू हम पर आए सब कष्टों को जानता है, कृपया हमें अपने देश से होकर गुजरने दीजिए। हम किसी खेत या अंगूर के बगीचे से होकर न जाएंगे और न किसी कुएं का जल पिएंगे। हम राजा के मार्ग पर चलेंगे और जब तक तेरे क्षेत्र से होकर न निकल जाएं, तब तक न दाहिनी ओर मुड़ेंगे और न बाईं ओर। परंतु एदोम ने उत्तर दिया, तुम यहां से होकर नहीं जा सकते। तब एदोम एक बड़ी और शक्तिशाली सेना के साथ उनके विरुद्ध निकला। चूंकि एदोम ने उन्हें अपने क्षेत्र में जाने से मना कर दिया, इसराइल उनसे दूर हो गया। सारा इसराइली समुदाय कादेश से निकलकर होर पर्वत पर आया। हारून मर जाता है और परमेश्वर एलियाजर को नियुक्त करता है। एदोम की सीमा के निकट होर पर्वत पर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, हारून अपने लोगों में मिल जाएगा। वह उस देश में प्रवेश न करेगा जिसे मैं इसराइलियों को देता हूँ, क्योंकि तुम दोनों ने मरीबा के सोते पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध बलवा किया। हारून और उसके पुत्र एलियाजर को पकड़ो और उन्हें होर पर्वत पर ले जाओ। हारून के वस्त्र उतारकर उसके पुत्र एलियाजर को पहनाओ, क्योंकि हारून अपने लोगों में मिल जाएगा, वह वहीं मर जाएगा। मूसा ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया। वे सारी मंडली के देखते होर पर्वत पर चढ़ गए। मूसा ने हारून के वस्त्र उतारकर उसके पुत्र एलियाजर को पहनाए और हारून वहीं पहाड़ की चोटी पर मर गया। वादा की गई भूमि पर कब्जा शुरू होता है। अराद के कनानी राजा जो नेगेव दक्षिण में रहते थे ने इसराइलियों पर हमला किया और उनमें से कुछ को पकड़ लिया। तब इसराइल ने यहोवा से यह मन्नत मानी, यदि तू इन लोगों को हमारे हाथ में कर देगा तो हम उनके नगरों को सत्यानाश कर डालेंगे। यहोवा ने इसराइल की प्रार्थना सुनी और कनानियों को उनके हाथ में कर दिया। उन्होंने उन्हें और उनके नगरों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उन्होंने एदोम के चारों ओर जाने के लिए होर पर्वत से लाल सागर के मार्ग पर यात्रा की, परंतु मार्ग में लोग अधीर हो गए। वे परमेश्वर और मूसा के विरोध में बातें करने लगे और कहने लगे, तुम हमको मिस्र से निकालकर जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? रोटी नहीं है, पानी नहीं है और हम इस घटिया भोजन से घृणा करते हैं। तब यहोवा ने उनके बीच विषैले सांप भेजे, उन्होंने लोगों को काटा और बहुत से इसराइली मर गए। लोग मूसा के पास आकर कहने लगे, हमने यहोवा और तेरे विरुद्ध बातें करके पाप किया, प्रार्थना करें कि भगवान सांपों को हमसे दूर ले जाएं। इसलिए मूसा ने लोगों के लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक सांप बनाकर खंभे पर खड़ा कर जिस किसी को भी काटा गया हो वह इसे देख सकता है और जीवित रह सकता है। इसलिए मूसा ने एक पीतल का सांप बनाया और उसे एक खंभे पर खड़ा किया। फिर जब किसी को सांप ने काटा और उस पीतल के सांप को देखा तो वह जीवित हो गया। संकलक की टिप्पणी, याद करें, यीशु ने कहा था, जब मैं पृथ्वी पर से ऊपर उठाया जाऊंगा तो सभी लोगों को अपनी ओर खींच लूंगा। उसने यह दिखाने के लिए कहा कि वह किस प्रकार की मृत्यु से मरने वाला था। जॉन 12:32-34 से उसका प्रायश्चित बलिदान उन सभी की आत्माओं को ठीक कर देगा जो उसकी इच्छा पूरी करने के लिए उस पर भरोसा करते हैं। आइए हम आपके देश से होकर गुजरें। हम किसी खेत या अंगूर के बगीचे में न जाएंगे और न किसी कुएं का जल पिएंगे। हम राजा के राजमार्ग पर तब तक यात्रा करेंगे जब तक हम आपके क्षेत्र से नहीं गुजर जाते, परंतु सीहोन ने इसराइल को अपने क्षेत्र से होकर जाने न दिया। उसने अपनी पूरी सेना इकट्ठी की और इसराइल के विरुद्ध जंगल में निकल पड़ा। जब वह जहेज पहुंचा तो उसने इसराइल से युद्ध किया। हालांकि इसराइल ने उसे तलवार से मार डाला और अर्नोन से यब्बोक तक उसकी भूमि पर अधिकार कर लिया, लेकिन केवल अम्मोनियों तक, क्योंकि उनकी सीमा दृढ़ थी। इसराइल ने एमोरियों के सब नगरों पर कब्जा कर लिया और उन पर कब्जा कर लिया जिनमें हेशबोन और उसके आसपास की सभी बस्तियां भी शामिल थीं। हेशबोन एमोरियों के राजा सीहोन का नगर था, जिसने मोआब के पूर्व राजा से युद्ध करके अर्नोन तक उसकी सारी भूमि उससे छीन ली थी। तब इसराइलियों ने मोआब के अराबा में कूच किया और यरीहो के पार यर्दन के किनारे डेरे खड़े किए। सिप्पोर के पुत्र बालाक ने वह सब देखा जो इसराइल ने एमोरियों से किया था और मोआब बहुत से लोगों के कारण घबरा गया। सचमुच मोआब इसराइलियों के कारण भय से भर गया था। मोआबियों ने मिद्यान के पुरनियों से कहा, यह भीड़ हमारे चारों ओर की सब वस्तुओं को इस प्रकार चट कर जाएगी जैसे बैल मैदान की घास को चट कर जाता है। मोआब और मिद्यान के पुरनिये भविष्य बताने का शुल्क अपने साथ लेकर चले गए। जब वे बिलाम के पास आए तो उन्होंने उसे वह सब बताया जो बालाक ने कहा था। परमेश्वर ने बालाम से कहा, उनके साथ मत जाओ। तुम्हें उन लोगों को श्राप नहीं देना चाहिए, क्योंकि वे धन्य हैं। बिलाम परमेश्वर के न जाने को कहने के बाद भी गया। चार बार बालाम ने उन्हें श्राप देने का प्रयास किया और चार बार आशीर्वाद दिया। बालाक का क्रोध बिलाम पर भड़क उठा। अब तुरंत निकलो और घर जाओ। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा, परंतु यहोवा ने तुम्हें इनाम पाने से रोक रखा है। तब बिलाम उठकर घर लौट गया और बालाक अपने मार्ग चला गया। जब मूसा और इसराइल की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी, तब एक इसराइली पुरुष उनके देखते ही एक मिद्यानी स्त्री को अपने पास ले आया। जब एलियाजर का पुत्र पीनहास, जो हारून का पोता याजक था, उसने यह देखा, तब वह मंडली से निकल गया और हाथ में भाला लेकर इसराइलियों के पीछे तंबू में चला गया। उसने भाला उन दोनों के आर पार कर दिया, इसराइली के आर पार और स्त्री के शरीर में। यहोवा ने मूसा से कहा, एलियाजर का पुत्र और हारून का पोता पीनहास याजक ने मेरा क्रोध इसराइलियों पर से दूर कर दिया है, क्योंकि वह उनके बीच में अपनी प्रतिष्ठा के लिए मेरे ही समान जोशीला था, यहां तक कि मैंने जोश में आकर उन्हें खत्म न किया। इसलिए उससे कहो कि मैं उसके साथ मेल की वाचा बांधता हूँ। वह और उसके वंशज स्थाई पुरोहिती की वाचा बांधेंगे, क्योंकि वह अपने परमेश्वर के सम्मान के लिए उत्साही था और उसने इसराइलियों के लिए प्रायश्चित किया था। वादा की गई भूमि पर कब्जा करने का समय। यहोवा ने मूसा और हारून के पुत्र एलियाजर याजक से कहा, पूरे इसराइली समुदाय की कुलों के अनुसार गिनती करो उन सभी 20 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो इसराइल की सेना में सेवा करने में सक्षम हैं, सो यरीहो के सामने यर्दन के पार मोआब के अराबा में मूसा और एलियाजर याजक ने उनसे बातें करके कहा, 20 वर्ष वा उससे अधिक आयु के पुरुषों की गिनती लो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, अबारीम पर्वतमाला के इस पर्वत पर चढ़ और उस देश को देख जो मैंने इसराइलियों को दिया है। इसे देखने के बाद तू भी अपने भाई हारून की नाई अपने लोगों में मिल जाएगा, क्योंकि जब मंडली ने सीन मरुभूमि में जल के पास बलवा किया, तब तुम दोनों ने मुझे अपनी आंखों के सामने पवित्र जानकर आदर देने की मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। ये सीन मरुभूमि में मरीबा कादेश के जल थे। मूसा ने यहोवा से कहा, प्रभु, सभी मानव जाति की आत्माओं का परमेश्वर, इस समुदाय पर एक व्यक्ति को नियुक्त करें जो उनके सामने बाहर और अंदर आ सके, जो उन्हें बाहर ले जाएगा और भीतर लाएगा। इस प्रकार यहोवा की प्रजा बिना चरवाहे की भेड़ों के समान न होगी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नून के पुत्र यहोशू नाम पुरुष को जिसमें आत्मा है लेकर उस पर अपना हाथ रख। उसे एलियाजर याजक और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उसे आज्ञा देना। उसे अपना कुछ अधिकार दो ताकि पूरा इसराइली समुदाय उसकी आज्ञा माने। यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों को यह आज्ञा दे और उनसे कह कि मेरे हव्य का भोजन जो मुझे सुखदायक सुगंध देने वाला हो नियत समय पर मेरे पास चढ़ाना। मूसा ने इसराइलियों को वह सब बताया जो यहोवा ने उसे आज्ञा दी थी। यहोवा आज्ञा देता है, जब कोई मनुष्य यहोवा के लिए मन्नत माने या प्रतिज्ञा करके अपने आप को बाध्य करने की शपथ खाए, तो उसे अपना वचन नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि जो कुछ उसने कहा है उसे करना चाहिए। संकलक की टिप्पणी, प्रतिज्ञा और अनुबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। वे प्रभु के प्रति समर्पित हैं। टिप्पणियां समाप्त करें। यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों के लिए मिद्यानियों से बदला ले। उसके बाद तुम अपने लोगों में इकट्ठे किए जाओगे। इसलिए मूसा ने लोगों से कहा, अपने कुछ लोगों को मिद्यानियों के खिलाफ युद्ध करने और उनसे यहोवा का बदला लेने के लिए हथियार दो। वे मिद्यान से लड़े जैसा यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी और सब पुरुषों को मार डाला। क्या तूने सब स्त्रियों को जीवित रहने दिया है? उसने उनसे पूछा। वे वही थे जिन्होंने बालाम की सलाह का पालन किया और पोर में जो कुछ हुआ उसमें इसराइलियों को प्रभु से दूर करने का साधन थे, ताकि एक महामारी ने प्रभु के लोगों को मारा। अब सभी लड़कों को मार डालो और हर उस स्त्री को मार डालो जो किसी पुरुष के साथ सोई है। संकलनकर्ता की टिप्पणी, मूर्ति पूजा सहित बुराई का प्रभाव दूर होना चाहिए। किसी भी बुरे प्रभाव को बनाए रखने से प्रलोभन और इच्छाएं आती हैं जो पाप की ओर ले जाती हैं। टिप्पणियां समाप्त करें। यरीहो के सामने यर्दन के तट पर मोआब के अराबा में यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइलियों से कह कि जब तुम यर्दन को पार करके कनान में जाओ, तब अपने सामने के सब निवासियों को निकाल देना। उनकी सब खुदी हुई और ढली हुई मूर्तें नष्ट कर दो और उनके सब ऊंचे स्थान ढा दो। उस देश को अपने अधिकार में ले लो और उसमें बस जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें वह देश अधिकारने को दिया है। अपने कुलों के अनुसार भूमि को चिट्ठी डालकर बांट देना। बड़े समूह को बड़ी विरासत दें और छोटे समूह को छोटी विरासत दें। जो कुछ चिट्ठी डालकर उनके पास आएगा वह उनका हो जाएगा। इसे अपने पुरखों के गोत्रों के अनुसार बांट दो। परंतु यदि तुम उस देश के निवासियों को न निकालोगे, तो जिनको तुम रहने दोगे वे तुम्हारी आंखों में चुभन और तुम्हारे पार्श्वों में कांटे ठहरेंगे। वे तुम्हें उस देश में कष्ट देंगे जहां तुम रहोगे, और फिर मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो मैं उनके साथ करने की योजना बना रहा हूं।